समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिसका आपसे है सरोकार। श्रोताओ, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास हम जाएंगे और जानेंगे कि क्या खास उनके पास है। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है या जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक में मैं हूं आपके साथ विनय सक्सेना और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, नमस्कार।
नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून विनय। विनय, वी हैव स्टार्टेड फीलिंग अ निप इन द एयर इन दिल्ली नाउ। Good to get that feel of winter, but along with it comes the scare of air pollution as every year.
बहुत ज़्यादा है।
जी, and bans and other restrictions seem to have little effect as the pollution still remains at an alarming level. People who can are travelling out of cities like Delhi to cleaner locations to escape the pollution that is now at an alarming level. But not everyone can leave everything and go. So to all of us who are here, we have to be careful with wearing masks and keep drinking medicinal kadhas to keep throat congestion due to pollution away and do some breathing exercises to keep our lungs strong. Come what may, Akashvani will always be there with you. Let's begin with news making headlines at this hour. Campaigning for first phase of assembly elections in Jharkhand in top gear as leaders of political parties hold back-to-back rallies. Prime Minister Narendra Modi says BJP has always taken care of interests and welfare of tribal people.
महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मुंबई में पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन का घोषणा पत्र जारी किया।
In Kashmir, two anti-terrorist operations underway at Zabarwan Forest Area in Srinagar and Sopor in Baramulla district.
कनाडा पुलिस ने ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर पिछले रविवार को हुए हमले के संबंध में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
Russian President Vladimir Putin signs a treaty with North Korea on comprehensive strategic partnership.
और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में न्यू साउथ वेल्स में ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत की अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता।
And of course, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we will talk about World Public Transport Day and World Science Day. So let's begin with the World Public Transport Day. It is a day which is observed every year on 10th of November and shines a spotlight on the importance of sustainable, accessible and efficient transportation systems for all. This day encourages us to embrace public transport, raise awareness about the dangers of rising traffic and push for fuel conservation. This year's theme is Connecting Communities, Reducing Emissions, which highlights how public transport not only encourages social connections, but also plays a key role in cutting down the environmental impact of private vehicles.
लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते अब दुनिया भर की सरकारें लोगों से प्राइवेट कार या बाइक का इस्तेमाल नहीं करने को कह रही हैं। लगातार शहरों में बढ़ रही गाड़ियों की संख्या जाम और प्रदूषण सिरदर्द बन गया है। ऐसे में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रुचि बढ़ाएं। कई देशों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया है। लग्जमबर्ग दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां 2020 से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करने के लिए किराया नहीं देना पड़ता। माल्टा ने 2022 में फ्री पब्लिक परिवहन सेवाएं देने की शुरुआत की। स्पेन में ट्रेन से यात्रा करना फ्री है। इसी तरह फिनलैंड, बुल्गारिया और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं मुफ्त हैं। अनुजा, हमारे यहाँ भी कोशिश तो चल रही है और मेट्रो के आने से कई शहरों में काफी फर्क पड़ा है कि लोग अपने प्राइवेट व्हीकल छोड़ के जाने लगे हैं, लेकिन काम तो अभी भी बहुत कर रहा है।
Yes, Vinay, with the rising pollution, public transportation systems play a crucial role in reducing greenhouse gas emissions and also in lowering individuals' carbon footprints. World Public Transport Day was born out of the growing need for sustainable transportation solutions in response to urbanization and rising environmental concerns. As cities expanded and car usage surged, issues like traffic congestion, air pollution, and resource depletion became more apparent. The significance of World Public Transport Day lies in its focus on addressing several global challenges through improved public transport system. It also highlights the key benefits of public transport, including reduced greenhouse gas emissions, of course, improved air quality, less traffic congestion, and better access to urban areas for all. And of course, with the rising number of cars and everything in a city where space is limited and the daily grind of traffic is a constant battle, World Public Transport Day resonates deeply. Vehicle parking is a major problem in urban areas in both developed and developing countries. Following the rapid increase of car ownership, many cities are suffering from lacking of car parking areas, and it is here when we must consider taking the public transport.
सार्वजनिक परिवहन में चलने से सेहत भी दुरुस्त रहती है. आज लोगों को कार या बाइक से चलने की आदत हो गई है. घर के पास बाजार जाने के लिए भी निजी वाहन का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में अगर लोग सार्वजनिक वाहन से चलेंगे तो उनकी वॉक होती रहेगी, वो एक्टिव रहेंगे और अलग से वर्कआउट करने के लिए समय निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. अनुजा, अगर हम कारवार छोड़ के थोड़ा सा पैदल चल के घर का सामान ले आए तो वो बहुत बढ़िया है. एक्सरसाइज भी हो जाती है, हेल्दी ऑल्सो एक्सरसाइज भी हो जाती है और पेट्रोल भी बचता है.
Absolutely. And in many cities, public transport is also a cost-effective alternative to private cars, providing economic relief for millions of people worldwide. The petrol is becoming costlier these days.
Bilkul.
So why not save on that and use the public transport so that we conserve on all these
things. क्योंकि कई बार छोटा छोटा distance cover करने में कितना pollution हो जाता है और कितना petrol लग जाता है, इसका अंदाजा हम लोगों को होता ही नहीं है.
Absolutely. And coming to our next topic of the day, which is World Science Day. The world observes World Science Day 2024 every year on 10th of November, highlighting the role of science in society and the need to engage people to actively debate on more scientific issues. This day underlines the importance and relevance of science in our daily lives.
शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है. विश्व विज्ञान दिवस का प्रस्ताव पहली बार 1999 में हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व विज्ञान सम्मेलन के दौरान रखा गया था. यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में इस बात पर चर्चा की गई कि विज्ञान समाज पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है और समाज के लिए अधिक उपयोगी हो सकता है. इसी उद्देश्य से विज्ञान की अहमियत को सामने लाना और विज्ञान से जुड़े मुद्दों पर आम लोगों की बहस को बढ़ावा देकर इस दिन के जरिए विज्ञान को समाज एवं व्यक्ति से और ज्यादा करीब से जोड़ा गया है.
Of course, the main aim of World Science Day for peace and development serves some key purposes like raising awareness. It creates awareness relating to the role of science in everyday life and contributions to peace and development. It also engages public participation in discussion and other activities of science. Of course, it facilitates coordination between scientists, policymakers, and general populations while having to address global challenges. The day represents the fact that science should not only be a collection of information, but an instrument used to solve world problems. It shares common scientific practices and invests in science education. World Science Day integrates scientific knowledge into community needs so as to develop an informative public that can react to scientific issues critically. Of course, the World Science Day for Peace and Development aims to make sure that students are aware of the latest developments in science, because in today's era, we cannot do without science. It also underscores the role scientists play in broadening our understanding and making this society more sustainable. If we talk about the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, it encourages people to join in celebrating the World Science Day by organizing multiple activities throughout the day. And this year, in 2024, the theme chosen for this year is Why Science Matters, Engaging Minds and Empowering Futures, highlighting the role of science as a key to unlocking solutions for some global issues and supporting sustainable development.
ये दिन हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व और उसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए युग की समस्याओं एवं चुनौतियों का समाधान करता है. यह दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और प्राकृतिक आपदाओं जैसी वैश्विक समस्याओं को हल करने में मदद करता है। यह युवाओं को विज्ञान का पता लगाने और दुनिया कैसे काम करती है इस बारे में जिज्ञासा विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। जागरूकता बढ़ाकर विश्व विज्ञान दिवस लोगों को समाज पर वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के सकारात्मक प्रभाव की सराहना करने के लिए एक साथ लाता है, लेकिन अब इस दिवस के साथ अध्यात्म को भी जोड़ा जाना चाहिए।
Right, so World Science Day for Peace and Development shows the importance of science and scientists for sustainable development and the need to inform and involve citizens in science. It is also an opportunity to show the world about science's relevance in our daily life and engage them in daily conversation.
और अनुजा, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास जाने का और उनसे ये जानने का कि वो आज हमारे लिए क्या खास लेकर आए हैं अपनी रिपोर्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों के लिए आईडी 11 अंकों के आईडी कार्ड की, जो आधार कार्ड की तरह है। अब किसानों को आधार आईडी की तरह 11 अंकों की किसान आईडी भी मिलेगी। केंद्र सरकार और गुजरात के संयुक्त प्रयास से शुरू की गई एग्री स्टेक योजना के तहत किसान रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को यह आईडी दी जाएगी। किसान पंजीकरण का यह कार्य 15 अक्टूबर से शुरू किया गया है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
अब सभी किसानों को आधार आईडी की तरह 11 अंकों की किसान आईडी भी मिलेगी। केंद्र सरकार और गुजरात सरकार के संयुक्त प्रयासों से शुरू की गई एग्रीस्टेक योजना के तहत किसान रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को यह आईडी दी जाएगी। किसान पंजीकरण का यह कार्य 15 अक्टूबर से शुरू किया गया है। कच्छ के जिला कृषि अधिकारी किरण सिंह वाघेला ने बताया कि कच्छ में किसान रजिस्ट्री का यह काम बड़े पैमाने पर चल रहा है और किसानों में इसके लिए अच्छी खासी जागरूकता देखी जा सकती है। सभी किसानों को 31 मार्च 2025 तक इस किसान रजिस्ट्री के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने के लिए कहा गया है।
ये आईडी बहुत जरूरी है किसानों के लिए। सभी किसानों को 31 मार्च तक किसान रजिस्ट्री के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने के लिए कहा गया है। पीएम किसान सम्मान निधि की आने वाले दिसंबर की किस्त के लिए किसान आईडी का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए पीएम किसान सम्मान निधि प्राप्त कर रहे सभी लाभार्थी किसानों को इस 25 नवंबर तक किसान आईडी के लिए पंजीकरण करना होगा। इसके लिए किसान को ग्राम पंचायत में वीसी या वीएलई विलेज लेवल वर्कर उसके पास जाना पड़ेगा। उसके लिए उनको आधार कार्ड और उसके साथ जो लिंक मोबाइल नंबर है वो और लैंड रिकॉर्ड जैसे 7 बार और 8 वो लेके वीसी के पास जाना होगा। फार्मर रजिस्ट्री करवाने के लिए आप वेब पोर्टल और सेल्फ रजिस्ट्रेशन का भी अभी ऑप्शन खुल गया है, तो आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि इस पंजीकरण के जरिए किसानों को अपनी जमीन के स्वामित्व की सारी जानकारी प्राप्त करना और कृषि एवं ऋण संबंधी सभी लाभ प्राप्त करना आसान हो जाएगा। किसान रजिस्ट्री के माध्यम से जमीन के सर्वेक्षण नंबर से आधार कार्ड को जोड़ा जाएगा और सरकार द्वारा 11 अंकों का एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा, जो किसान के तौर पर एक डिजिटल पहचान होगी। इस नंबर के माध्यम से भूमि विवरण, फसल विवरण आदि की जाँच की जा सकती है, साथ ही फसलों के बाजार मूल्य का भी पता चल सकेगा। इसके अलावा कृषि, बागवानी, पशुपालन योजनाओं की जानकारी भी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी और इन योजनाओं के लिए पंजीकरण करना भी आसान होगा। इस रजिस्ट्री के माध्यम से पीएम किसान योजना, आई खेडूत, पीएम एफबीवाई, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लिंक किया जाएगा। परिक्रमा के लिए भूज कच्छ से अशरफ नथवाणी।
In fact, with lush green hills covered with thick forest, air pollution may not be a big issue in Mizoram. However, the state government is making concerted efforts in controlling pollution by way of checking vehicles on the roads every day and spreading awareness by various means. In a demonstration of its commitment towards clean air, the Mizoram State Pollution Control Board, supported by Mizoram Cycling Association, sponsored one Van Lal Mazuala Varte on All India Cycling Tour. Our correspondent has filed more details on it.
With the aim of spreading awareness about pollution, a 34-year-old Aizawl boy has recently completed travelling more than 17,000 kilometres. Meet Vanalom Zwala Varte, popularly known as El Zeta, who took cycling since 2013. Deeply concerned with climate change and global warming, El Zeta started his All Indian Cycling Tour on January 25th and returned to Aizawl on November 5th after riding across 28 states and 5 union territories. Speaking to Akashvani, They're resilient as it advocated for a more sustainable way of life and fostering greater sense of environmental responsibility among all sections of the society.
Back in 2009, I have been on this adventure lifestyle. And being an adventurer really close to nature, I was thinking like nowadays we have many problems in climate change, global warming. And I was thinking, what can I do for my country? So I'm just a BCom, so I don't have much anything to invent like that. So I was thinking during my fitness prime, what can I do for my country? Cycling has been on my life since 2013, and cycle was a part of my weapon. I was thinking maybe I can cycle all through India, motivating the youth to use this cycling for commuting as a short or as well as long commute, so we can reduce carbon emission like that. I was thinking like that, and here I am finishing my journey.
The epic cycling journey of Elzada took 286 days. Radila Ramratizote, Akashvani, Aizol.
And the 67th Grammy Awards are set to take place on the 2nd of February 2025 in Los Angeles, where music industry professionals and enthusiasts worldwide will gather to celebrate the year's finest musical achievements. The night holds special significance for Indian music enthusiasts and artists as they eagerly await the results of these groundbreaking nominations. We have a report by Payal Sharma.
Prominent Indian musicians Ricky Cage and Anushka Shankar have earned Grammy nominations for the 67th Grammy Awards. Ricky Cage, a three-time Grammy winner, received his fourth Grammy nominations for his album Break of Dawn in the Best New Age, Ambient or Chant album category. Anushka Shankar, renowned sitarist and composer, was also nominated in the same category for her album Chapter 2, How Dark It Is Before Dawn, a reflection of her distinctive fusion of traditional and contemporary sounds. Other nominees in this category are Warriors of Light by Radhika Vikaria and Triveni by entrepreneur and musician Chandrika Tandon. The Grammy Awards recognition of Indian artists speak to the growing appreciation of Indian music and musicians in the international arena. Through their groundbreaking work, these artists have expanded the boundaries of global music, creating compositions that honor traditional Indian sounds while embracing modern techniques and collaborative styles. Payal Sharma for Parikrama.
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज से 73वें अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियंस की शुरुआत हुई है। इसका उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता से एक रिपोर्ट।
The championship is being organized by the India Police Sports Control Board, and around 1100 players from 25 states, 4 union territories and 10 central armed police forces participating in various events like javelin throw, shot put, relay race and steeplechase, among others. The championship aims to encourage physical fitness and athletic excellence among police officials. Athletic events are being conducted at the Jawaharlal Nehru Stadium, and the cycling events are hosted at the National Institute of Disaster Management, Sector 29, Rohini. All the teams, accompanied by the captain as flag bearers, paid respect to the Delhi LG present on the occasion. Talking to Akashvani News, athletes spoke about the preparation and expectations to perform better.
My name is Harpreet Singh, and I am representing the police team here. My event is discussed here. Last year, I got a gold medal here, and I have been working very hard because I can get my gold event.
There is a sense of excitement and enthusiasm among the participants of the championship, which will end on the 14th of this month. Sumit Saha for Parikrama.
And now we have for you a defense news capsule from Directorate of Public Relations, Ministry of Defense. The report has been filed by Broadcasting Officer Anand Saurabh.
The thrust of Ministry of Defense and the Government of India is on defense, research and development and innovation endeavors in defense technology. A number of schemes like IDEX have been implemented to nurture the innovation of youth and help the country leap forward in the field of technology. We spoke to one such innovator.
I'm Sanket from Cypher, and we currently build autonomous and intelligent products for the defense and security. So we have a wide range of products all the way from underwater to space. We work closely with the Indian Armed Forces, and we have almost around 5 IDEX contracts, and we also have launched 3 satellites into space. We have 5 IDEX contracts, and IDEX DIU has played a very important role in our company's journey. We have got a lot of attention from the Armed Forces. It's not easy as a startup to reach out to the end users. Now, what we get through IDEX is that connect. They put you in touch with these end users. They put you on the radar, not only with the Indian Defense Forces, but also abroad. So we have demonstrated our products to Argentina, US, Canada, Germany, all the armed forces from throughout the globe. And that has happened through the IDEX DIO team. So primarily what we look at is we are trying to solve the defense problems of the future. So all our products are looking a minimum of 5 to 10 years ahead. And that is what we see here. Now at Swavlamban, we are launching 2 of our new products, which is the first time we're unveiling it here. And the kind of attention, the kind of interest that we have collected so far from the end users has been really great. A really good platform, a really good event from the Indian Navy, and the interest that they have shown to support young startups like us.
The endeavor of these young, talented entrepreneurs will definitely make India Atmanirbhar and Viksit in coming years as envisioned by Prime Minister Shri Narendra Modi. For Parikrama, this is Anand Saurav from the Directorate of Public Relations, Ministry of Defense.
And now let us take a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On 10th of November 1698, Calcutta was sold to the East India Company. Having started trading in Bengal as early as 1633, the East India Company wanted to obtain more rights of trade in the region.
In 1682, Hosiah Child was the governor of the English East India Company in London. Hosiah Child was also the governor of Bombay. He sent William Hedges to Bengal in order to obtain an imperial farman. Due to the arrogance of the British, Emperor Aurangzeb broke off the negotiations. After that, Hosiah Child decided to wage a war against Aurangzeb.
In 1685, the British sent out 12 warships to seize Chittagong. But fate took an interesting turn. During their voyage, the ships were dispersed due to strong winds. Some ships, instead of steering for Chittagong, entered the Hooghly. The arrival of such a formidable expedition alarmed the Mughals. The Mughal army offered negotiations, but the British in return strengthened their fleet and bombarded Baleshwar.
After that, Emperor Aurangzeb issued orders for the complete annihilation of the British possessions. In 1689, after a year of resistance, the English surrendered. In utter humiliation, the company sent envoys to Aurangzeb's camp to plead for a pardon. The company's envoys had to prostrate themselves before the emperor.
As a result, the company moved their factory about 20 miles down the Hooghly River to Sultanathi. This settlement gradually extended to Calicutta and Govindpur. Calicutta became the headquarters of the East India Company in Bengal. Calicutta was renamed Calcutta by the British. And on 10th of November 1698, the company actually purchased the 3 towns of Sultanathi, Govindpur and Calicutta.
Fortification of the town was completed in 1706. Known as Fort William, the settlement grew rapidly, and in 1707 it was raised to the status of a presidency. Kolkata later emerged as the pioneer center of Indian nationalism.
Today is also the birth anniversary of Surendranath Banerjee. Born in Calcutta on 10th of November 1848, Surendranath Banerjee was a major figure in Indian nationalism during the late 19th and early 20th century. A believer in moderate means, he was deeply committed to achieving constitutional objectives by constitutional methods.
Upon completion of his early education in India, Surendranath Banerjee went to London. In 1869, Surendranath became the second Indian to succeed in the Indian Civil Service competitive examination.
He was appointed to a post in Sylhet, in present-day Bangladesh, in his homeland. However, in 1874, he was dismissed for a minor and apparently inadvertent procedural error. Banerjee felt he had been discriminated against because he was an Indian. Upon returning to Calcutta in 1875, he embarked on a political career to organize Indian public opinion and protect the rights of Indians. To achieve this, He founded the Indian Association in 1876.
The Indian Association had set the stage for a more practical demonstration of the newly awakened sense of political unity of India. The first session of the Indian Association was held in Calcutta in December 1883. The session was attended by more than 100 delegates from different parts of India.
Banerjee was active in teaching for 37 years and considered it his chief vocation, though inseparable from his political work. Surendranath Banerjee took a chair in English literature at the Metropolitan Institution, now Vidyasagar College, and subsequently taught at the Ripon College, now Surendranath College.
In 1878, he became a proprietor of an English language newspaper, The Bengali, through which he espoused liberal causes for nearly half a century. He also played a prominent role in the Indian National Congress from the time of its founding in 1885. He was the president of the Indian National Congress in 1895 and 1902.
Banerjee was a believer in moderate means of political agitation, meetings, petitions, and legislative action. His grasp of the English language and his skills as an orator and debater made him an outstanding public speaker. He reached the peak of his political career in opposing the partition of Bengal in 1905. During these years, he was often called the uncrowned king of Bengal.
He was elected to the reformed Legislative Council of Bengal in 1921, knighted in the same year, and held office as Minister for Local Self-Government from 1921 to 1924. He was defeated at the polls in 1923. He breathed his last at Barakpur on August the 6th, 1925.
और अब चलते हैं खेल के मैदान की ओर और जानते हैं वहां की हलचल। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में न्यू साउथ वेल्स ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता में भारत की अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में अनाहत ने हांगकांग की हेलेन टैंग को 3-1 से हरा दिया। अनाहत ने टैंग को 8-11, 11-6, 11-3 और 11-4 से हराकर अपने कैरियर का 7वां पीएसए चैलेंजर टूर खिताब जीत लिया। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम गकेबारहा में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 7:30 बजे शुरू होगा। शुक्रवार को पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 61 रन से हराया था। श्रृंखला का तीसरा मैच बुधवार को सेंचुरियन और चौथा मैच शुक्रवार को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा।
Yes, India currently on a 11 match winning streak, which includes a series victory in Zimbabwe, series sweeps against Sri Lanka and Bangladesh, and also a win in the opening game of the series against South Africa.
और श्रोताओ, अब समय उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है या जन्मदिवस। श्रोताओ, आज सबसे पहले हम याद करते हैं विजयदान देथा को।
राइट, विजयदान देथा, आल्सो नोन एज बिजी, वाज अ नोटेड इंडियन राइटर ऑफ राजस्थानी लिटरेचर। ही इज अ रिसिपिएंट ऑफ सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग द पद्मश्री एंड द साहित्य अकादमी अवार्ड। इट इज हिज डेथ एनिवर्सरी टुडे। देथा हैज मोर देन 800 शॉर्ट स्टोरीज टू हिज क्रेडिट, व्हिच हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। विद कोमल कोठारी, ही फाउंडेड रूपायन संस्थान, एन इंस्टीट्यूट that documents Rajasthani folklore, art and music. Many of his stories and novels have been adapted for the stage and the screen, which includes Habib Tanveer and Shyam Benegal's Charandas Chor, Prakash Jha's Parinati, Amol Palekar's Paheli and many more.
राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 1972-73 में विशिष्ट साहित्यकार के रूप में भी उन्हें सम्मानित किया। दुविधा पर आधारित हिंदी फिल्म पहेली बनी ये उनकी किसी रचना पर बनी अंतिम फिल्म है।
राइट, एंड द नेक्स्ट पर्सनालिटी विनय,
हम जिक्र करेंगे मनमोहन महापात्र का। आज हम याद कर रहे हैं उड़िया फिल्मों के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक मनमोहन महापात्र को। उड़िया सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में उनका योगदान अतुलनीय है। 30वें राज्य चलचित्र पुरस्कार में मनमोहन महापात्र को उनकी फिल्म भिजा माटी रे स्वर्ग के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्होंने पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में फिल्म निर्माण का अध्ययन किया। सन 1975 में मनमोहन महापात्र ने अपनी पहली लघु फिल्म एंटी मेमोरियल्स बनाई। 1976 में उनकी पहली फिल्म सीतारती ने उन्हें उड़िया में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। मनमोहन महापात्र ने बिट्स और मोहरे सहित कुछ हिंदी फिल्मों का निर्देशन भी किया.
Yes, and Manmohan Mahapatra is also the recipient of India's highly prestigious award, Padma Shri, in the year 2020 for his work in the field of art. And today, we also wish a very happy birthday to a theatre artist, a theatre personality, Ashutosh Rana. He is an Indian actor, producer, author and television personality. He has worked in Marathi, Telugu, Kannada, Tamil and Hindi films, along with working in various Indian television shows. He is known for his portrayal of negative roles. He has received several awards, including a Filmfare Award and two Filmfare Awards for his famous movies as well.
दुश्मन और संघर्ष के लिए उन्हें ये फिल्म फेयर पुरस्कार मिला. और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए विनय सक्सेना और मेरी सहयोगी अनुजा को ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की. और अगर आप इस कार्यक्रम को सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइटों पर जाइए. नमस्कार.
नमस्कार.